आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल, जिलाधिकारी को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ित परिवारों को प्रदान की राहत सामग्री और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने आज मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ ने आज बैठक में लिया हिस्सा, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों की ली जानकारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति का हाल जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने काशी में नदियों के जलस्तर और राहत शिविरों में किए जा रहे इंतजामों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी से भी फोन पर बाढ़ की स्थिति का फीडबैक लिया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि बाढ़ राहत कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए।
प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो यहाँ की बाढ़ की स्थिति है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है और यह निर्देश दिया गया है कि जो बाढ़ राहत बचाव का कार्य है वो युद्ध स्तर पर चलाया जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए ये सुनिश्चित करें। जो वर्तमान में वाराणसी में गंगा जी का जलस्तर है वो 70.6 मीटर पे चल रहा है, जो वार्निंग लेवल होता है, चेतावनी बिंदु है हमारा, उससे करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। इसमें करीब 17 बाढ़ राहत शिविर हमारे संचालित किए जा रहे हैं और उसमें करीब 1800 लोग हैं जो आज की डेट में वर्तमान में बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। श्री योगी ने बाढ़ से प्रभावित लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ में आश्रयहीन हुए परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार बाढ़ की आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आते ही अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर जरूरत का ध्यान रखते हुए सरकार उन तक हर संभव मदद और राहत पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर और जिन गांवों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस चुका है वहां पर उन सभी प्रभावित परिवारों के लिए शासन ने जो सुविधा उपलब्ध करवाई है, उनके रहने के लिए, भोजन के लिए, और जो लोग अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों पे उन तक राहत सामग्री की किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना चाहती है, इसके लिए ड्रेजिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। इसमें जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी। भारी बारिश के कारण आज जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में स्कूलों में छुट्टी रही। उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर और बढ़ने के बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा और बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मथुरा समेत सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ आर्थिकी पर भी सरकार ध्यान दे रही है।
विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती, और इसीलिए डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी।
मुख्यमंत्री कल सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन भी करेंगे। वहीं कल शाम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के आयोजन में शामिल होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर ब्रजनगरी मथुरा पूरी तरह सजकर तैयार है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि जन्मोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मथुरा में कल जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर पूरे मथुरा शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा के जन्म स्थान की सुरक्षा में कमांडो के साथ साथ सिविल पुलिस, पीएसी, एलआईयू, सीआईएसएफ, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। शहर की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मंदिर परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि यातायात, भीड़ नियंत्रण और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। शहर के सभी होटलों और गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में निरंतर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ एयर मार्शल रिटायर्ड जितेंद्र मिश्रा ने आज अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने भरोसा जताया कि अपने अनुभव और कार्यशैली के साथ वो इस पद की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। श्री मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझने के बाद ही वो औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे।
पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना। अब अगले 2-3-4-5 दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूंगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूंगा। जब मैं इसको भली भांति से समझ लूंगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूंगा।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के विधिक माप विज्ञान विभाग ने आज लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में हुए रिफॉर्म्स को सभी हितधारकों तक पहुंचाना है।
जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में डीक्रिमिनलाइजेशन के माध्यम से जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको हम अपने लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स तक पहुंचाएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बताएं, हमारे जो ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनको बताएं, ताकि हम इसका सरलीकृत कर सकें, ताकि न केवल उपभोक्ताओं का हितों के संरक्षण की भी बात हो बल्कि हमारे देश में जो ट्रेड और कॉमर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़े।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल, जिलाधिकारी को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ित परिवारों को प्रदान की राहत सामग्री और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने आज मथुरा में करीब 1,051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ ने आज ट्रस्ट की बैठक में लिया हिस्सा, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों की ली जानकारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।